Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. For listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix Delhi STD code 011. I am Anubha Rohatki and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra.
धन्यवाद अनुभा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंच के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे. यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है. हमारे तीन टेलीफोन नम्बर्स हैं 2331-4444, 2371-7106 और 2342-1050. इस पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं. दिल्ली के बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले हमेशा की तरह 011 अवश्य डायल करें. स्टूडियो में चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक श्री सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है.
धन्यवाद.
और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी अनुभा रोहतगी.
थैंक यू विभूति. Crude prices skyrocket in global market due to Israel-Palestine conflict. Petroleum Minister Hardeep Singh Puri says the conflict will not create energy issue for India. Domestic stocks end in negative territory. Sensex lost 483 points. Nifty finished below 19,600. And negative sentiments seen in Asian and European markets.
इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस संघर्ष से देश में ऊर्जा का संकट नहीं होगा. घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद. सेंसेक्स 483 अंक लुढ़का. निफ्टी 19,600 के नीचे बंद. और एशिया और यूरोप के बाजारों में भी गिरावट हुई.
Let's begin with the top story of the day. Oil futures opened with strong gains late Sunday as traders reacted to an attack by Hamas on Israel, raising Middle East tensions and stoking worries about the outlook for crude supply. Brent crude oil futures rose 2.77% and traded at $86.92, whereas Western Texas Intermediate jumped 3.06% and was trading at $85.32.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष भारत के लिए ऊर्जा का संकट पैदा नहीं करेगा. नई दिल्ली में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस पर बहुत ध्यान से नजर रख रही है. उन्होंने कहा कि देश इस मुद्दे से अपना रास्ता निकाल लेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा परिवर्तन पहले जीवाश्म आधारित से स्वच्छ ईंधन और फिर नवीकरणीय की ओर होगा.
And we have our first caller of the day. That is Mr. Atanu Shah from Kolkata. Mr. Shah, welcome to the Market Mantra. Please ask your question.
Good evening. Good evening to everybody. I am Atanu from Kolkata. Sir, my question is how do we a resilient, educated investor? How and what are the criteria to be a good or educated or resilient investor? Thank you.
Mr. Saha, the question is about the resilient investor, and he also needs to be the good resilient investor. My simple answer to this question is that he or she should be well aware with the financial attitude, financial behavior along with the financial literacy. The basic of financial literacy is very, very important to be resilient in the market. We all know that there is too much uncertainty in the financial market, especially when we talk about the stock market or when we talk about the mutual fund. Of course, we have some certainty in the banking sector as well as in some other sectors, but considering more and more people are interested in stock market and mutual fund, so any kind of resilience will be possible if you follow the three things. One, literacy. Try to be literate as much as you can. Try to read the numbers as much as you can. Financial behavior and, of course, the financial attitude.
इसी बीच दिल्ली से हमारे श्रोता हैं सुरेंद्र कौशिक. कौशिक जी, आपका मार्केट मंच में स्वागत है. प्रश्न पूछिए.
सर प्रणाम. सर मैं बस ये पूछ रहा था कि जो अब करंट सिचुएशन है.
जी सुरेंद्र जी सवाल पूछें.
जो करंट सिचुएशन है उसमें क्या म्यूचुअल फंड में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या हम डायरेक्ट शेयर मार्केट इफेक्टिव है उसमें?
सुरेंद्र जी देखिए, इस समय में शेयर बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव है वो बिल्कुल उचित नहीं होगा कि आप उसमें सीधे सीधे निवेश करें. और आपने देखा होगा कि आज भी शेयर बाजार में हमने गिरावट देखी है और ये अनिश्चितता बढ़ रही है क्योंकि आपके सामने दूसरी ऐसी परिस्थिति है. पहले हमने रूस और यूक्रेन देखा और अब हम गाजा पट्टी पे जिस तरीके की लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में बेहतर यह है कि शेयर बाजार में सीधे निवेश से बचा जाए. म्यूचुअल फंड में भी अगर आप निवेश करते हैं तो ध्यान रहे कि आपका हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट वाले म्यूचुअल फंड हो, डेट वाले म्यूचुअल फंड हो, डायरेक्ट इक्विटी वाले से या फुल्ली इक्विटी म्यूचुअल फंड से बचें तो बेहतर होगा.
And the next caller is from Bangalore. That's Mr. N.R. Prasad. Mr. Prasad, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Hi, good evening, Market Mantra.
Good evening, Mr. Prasad. Please ask your question.
This is N.R. Prasad from Bangalore. Two questions. Of course, it was told already that the Israel-Palestinian war is on. My question is how long this will continue and how would it affect in particular the Indian market? Forget about the Asian market, but Indian market, stock market. My second question is, again, FPI, you know, withdrawal of more than 8,000 crore in the just 4-5 trading during October. So I would like to know what is the reason for the same and on which sector these were withdrawn. Now, what is the hesitations here for withdrawing 8,000 crore from the FPI? These are my two questions. Thank you.
Now, coming to your first question, Mr. Prasad, how long the situation will continue? I'm sorry, I can't be in a situation. I'm not in a position to tell you because certainly I'm not an astrologer to talk about these things. And of course, I'm not related with Israel or Palestine. But we can hope that this kind of tussle will end soon. And if you can remember last year when the Russia-Ukraine war started, people were asking the same question, how long? And the war is still on. So we do not know that when it will going to end, number one. Number two, your question about the impact on the Indian market. See, Indian market is not something which is isolated from the global economy. Whenever there is an uncertainty in the global market, Indian market will also be affected. When the Asian markets or European market or US market gets affected, Indian market will also be affected. Today we have seen some kind of contradiction. We have seen some markets have shown some positive, but in the Indian market was affected, and one region was the crude prices, because we all know that whenever there is a rise in the crude prices, that's going to disbalance our fiscal situation. So at this moment, what we are expecting that there will be some impact on the Indian market. Now, coming to your second question about the FPI withdrawal of 8,000 crore rupees, you know, the US yield in the US market is very high, and that is giving some kind of room for the foreign portfolio investor to take money out from the India. And if you talk about any sector, I mean, there are a number of sectors from where they have withdrawn the money. It's not possible for me to pinpoint any particular sector.
इसी बीच दिल्ली से हमारे अगले कॉलर हैं योगेश शर्मा. योगेश शर्मा जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. प्रश्न पूछें.
नमस्कार सर. सर जिस तरह अभी मार्केट में लोग बहुत परेशान हैं और आप लंबे समय वाले हमारा होराइजन है तो हम उसको चेंज नहीं करने वाले. सर जो मेरे है वो क्लास को लेकर के है, दो तरीके के एसेट क्लास जो मेनली कंजम्पशन के लिए थी, गोल्ड और रियल एस्टेट. और अब हम देख रहे हैं कि उनको भी पेपर एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, गोल्ड के ETFs आ गए हैं, SGB आ गए हैं, और रियल एस्टेट के मामले में भी REITs करके REIT करके जो आ गए हैं वो आ गए हैं। तो क्या इनको हमें फाइनेंशियल फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या इनको फिजिकल फॉर्म में ही अभी इन्वेस्ट करना ज्यादा समझदारी होगी जो इनका नेचर है उसकी वजह से?
देखिए, गोल्ड के मामले में व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक बेहतर विकल्प है। उसके पीछे दो आर्गुमेंट हम हमेशा देते हैं। पहला तो यह है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में आपको चिंता नहीं करनी होती है। दूसरा यह कि अभी जो हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जिसमें आपको हर साल लगभग 2.5% का ब्याज मिलता है, 8 साल के बाद जो आपको रिटर्न होता है उस पर आपको किसी तरह से कैपिटल गेन नहीं देना होता है, तो ये कुछ ऐसे एडवांटेज हैं जिसकी वजह से मैं पेपर गोल्ड के लिए वकालत करता हूं। वैसे भी अगर कहते हैं ना कि हम सोने में जो निवेश करते हैं उसमें भावनाएं ज्यादा होती हैं, पैसे का निवेश कम होता है, तो वो फिजिकल गोल्ड में हम पैसा लगाते हैं, हम वहां निवेश नहीं करते हैं, वो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। रहा सवाल जमीन जायदाद का, तो जमीन जायदाद का रिट एक अच्छा विकल्प जरूर है, लेकिन इसमें भी अगर आप चाहें तो फिजिकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिजिकल रियल एस्टेट में कुछ समय के लिए जरूर जो है आपको एक गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियल एस्टेट जो है वो अच्छा रिटर्न देता है, और अभी के समय में हमने देखा है कि रिटर्न अच्छे मिले हैं।
Mr. Sinha, you know, the first story of the day, of course, was the crude oil prices, and we saw what our petroleum minister, Mr. Hardeep Singh Puri, said. He has said that this will not create any issue at this point of time for India, but he's also said that if the oil prices, you know, go beyond $100, then it's going to be not sustainable. And he's also made a very important statement saying that India will navigate its way through this issue and we are moving towards energy transition. So he's like, you know, this is also an indication that, you know, the importance of moving towards cleaner and green energy that he's emphasized on.
Certainly, the first point when you're talking about rising crude prices, we all know that almost we are importing 85% of our crude requirement. So any kind of change in the crude prices globally will have some impact on the fiscal. Since we have not seen any kind of price revision since last May, and at this moment we are not expecting, and we believe that oil marketing companies are in a position to absorb any kind of fluctuation. Also, we should remember that it is not the contract which is done on a day-to-day basis. Contract is done on a 3-month or a 6-month basis. So the crude which is being supplied to crude oil marketing company today, the contract must have taken place almost in the month of, say, February, March or April. So there was some kind of there's room available for that. And also, oil marketing companies are going for hedging their contracts. So that is giving some room to them. Talking about the clean energy or the green energy, of course, that's a requirement. That's a need of the day. We need to think about those things because fossil fuel, we all know that has a limited stock available. And after a certain period of time, we will have to go for the new and the renewable energy. And I think that the minister's statement is very, very important in this regard.
And let's take the call from our next listener, who's from Delhi, Mr. Anil Ahuja. Mr. Ahuja, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Good evening, team. My simple question is, during this downtrend, generally we believe that averaging is a very good exercise. How long one should do averaging for shares? Please suggest.
Mr. Ahuja, of course, averaging is a very, very rational move, and whenever there is a lowering of prices or when there is a down in the prices, it's better to go for averaging the thing, or in simple word, buy the stocks at the lower price and average the overall, the cost prices. But how long is a very, very difficult answer. Why I'm saying difficult answer? Because we do not know that when the geopolitical tension is going to end and when the market will be in a better situation. So whenever you get an opportunity to book the profit, please do not hesitate, because all these things are the notional profit. As soon as you are thinking that there is a reasonable return on your capital which you have put in the stock, please book a profit. Do not wait for further addition to your profit, and good nominal good profit could be 8% or 10% depending upon your requirement. But if you are thinking about 20%, 25%, 30%, that may not be the right thing to do.
शेयर बाजार का हाल जान लेते हैं। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज आधा प्रतिशत से अधिक गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बीएसई सेंसेक्स 66,600 अंक से नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 19,600 अंक से नीचे बंद हुआ है। सेंसेक्स 483 अंक टूटकर 65,512 पर और निफ्टी 141 अंक टूटकर 19,512 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 1.2% की गिरावट आई और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.7% की गिरावट आई।
द की डोमेस्टिक शेयर इंडिसीज टुडे एंडेड मोर देन 0.5% डाउन। द बीएसई सेंसेक्स क्लोज्ड बिलो द 66,600 मार्क, व्हाइल द एनएससी निफ्टी सेटल्ड बिलो 19,600 पॉइंट्स। The Sensex lost 483 points to close at 65,512, while the Nifty was down by 141 points to close at 19,512. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 1.2% and the small-cap index was down 1.7%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 27 companies were in red, while 3 companies closed in green. Mahindra & Mahindra plunged 2.05%. Bajaj Finance declined 1.73%. And Tata Steel fell 1.67%. Whereas HCL climbed 1.02% and TCS and HUL both gained about 0.5% each. All 20 sectoral indices at the BSE closed in red. Services sector declined 2.7% down, while utilities index fell 1.9% and power sector slipped 1.5%. The overall breadth of the market was negative as shares of 2,804 companies declined and shares of 993 companies advanced. A total of 132 shares remained unchanged. Mr. Sinha, like we said, and you also mentioned right at the beginning of the program, that this market, the downfall that we've seen today of almost 500, close to 500 points is obviously because of the international crude prices rising. But the fact of the matter is, like you rightly said, that we cannot look into the crystal ball and, you know, predict when this conflict is going to end. But the geopolitical realities have changed a lot. You know, the way situation was in the Middle East a few years ago when the oil prices were at the rise, and now have changed. So given that, what is your prediction? Like, how far do you think the price, how far do you see the prices going up?
There are two issues at this moment. When we are talking about geopolitical tension, we should also remember that OPEC plus countries have announced cut in the production,
yes,
cut in the supply, and also the export has also been cut. So there is a combination of factors which are putting pressure on the oil prices or the crude oil prices. At this moment, it is difficult to predict. But what we are expecting, or what we are apprehending rather, if I use the word from the Indian consumer point of view, we are apprehending that the price may touch 96-97, and if the situation continues, it may go beyond $100 a barrel. And in fact, if you can remember, Oil Minister Hardeep Puri has also talked about $100 a barrel prices. So that is a kind of situation we should keep in mind, and there could be some situation if these kind of situations continue, if this kind of geopolitical situation continue. So going in the next 3 to 6 months, if I take the situation as it is, and if it does not further escalate, then we will see some kind of moderation. But if it escalates further, which we are apprehending that it may, then it will go up beyond $96 or $97.
Then let's cross our fingers and certainly hope that the situation, you know, de-escalates at the earliest and oil prices also stabilize.
And not just from the economy point of view, but also from the humanity point of view. That
absolutely
is very, very critical.
Right. And the next caller is also from Delhi. That is Mr. Anil Tutu. Mr. Tutu, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Thank you and namaskar. Mera ek simple sa question, ye jo hybrid instruments hai, ye kya cheez hai? Jaise debt aur equity ka mere ko thoda bahut idea hai, but I would like to know something about this hybrid instruments which you talked just now for these mutual fund investments. Thank you.
देखिए अनिल जी, ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें कुछ ऐसे एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कई बार होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो एक खास सेक्टर्स के जो हैं वो जैसे रीट है, उसमें आपने पैसे लगा दिए या फिर आपने गोल्ड बेस्ड कुछ ऐसे प्रोडक्ट है उसमें आपने पैसे लगा दिए इक्विटी और डेट के अलावा, क्योंकि नॉर्मल जो कंसेप्ट म्यूचुअल फंड का रहा है, और मुझे लगता है कि धीरेन्द्र जो कि रविवार को आपके कार्यक्रम में आते हैं वो म्यूचुअल फंड के बेहतर ज्ञानी है, जो कुछ मैंने उनसे सुना है समझा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आमतौर पर म्यूचुअल फंड को लेकर के हमारी धारणा जो है वो शेयर और बॉन्ड को लेकर के होती है, लेकिन कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि एक खास तरह का जैसे प्रोडक्ट रीट है या फिर गोल्ड बेस्ड कोई प्रोडक्ट है या फिर मान लीजिए कि एनएफटी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो है वो पैसा लगाते हैं। हालांकि वो एलोकेशन कई बार बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपका फंड इक्विटी बेस्ड है या डेट फंड बेस्ड है, क्योंकि टैक्सेशन में वो प्रिंसिपल ज्यादा क्रिटिकल होता है। बाकी जो एग्जॉटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एलोकेशन थोड़ा कम होता है।
जी, दो चीजें मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। एक तो एशिया यूरोप वहां भी कुछ हम देख रहे हैं कि नेगेटिव वहां पे ये हैं और इससे भारतीय शेयर बाजार में भी, तो गाजा पट्टी में जो संघर्ष है उसका सीधा इम्पैक्ट आप कितना मानते हैं, नंबर एक। दूसरा ये कि रूस यूक्रेन का आपने युद्ध देखा, भारत ने रास्ता भी निकाला उसमें। अभी पेट्रोलियम मंत्री का ये कहना कि देश में ऊर्जा का संकट नहीं होगा कहीं न कहीं से दिखाता है कि हम आत्मनिर्भर पूरी तरह से हो रहे हैं।
देखिए, गाजा पट्टी का संघर्ष जो है वो सिर्फ गाजा पट्टी तक सीमित नहीं है, पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के भी शामिल होने की आशंका, और वो देश है जो कि तेल का उत्पादन करते हैं। क्योंकि देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था में कच्चा तेल एक अहम मुद्दा है, और पूरी विश्व अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं उसमें, चाहे सोने की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, सोना भले ही वो असर ना डाले, सोने को हम हमेशा एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखते हैं कि जब कभी भी अनिश्चितता है तो बचाव के लिए हम सोने में पैसा लगा देते हैं, लेकिन कच्चा तेल ऐसा है उसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है। और अब जैसा आपने गाजा पट्टी का जिक्र किया, कितना असर पड़ेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि और कौन कौन से देश इसमें आते हैं, और वो यदि ज्यादा से ज्यादा तेल उत्पादक देश और उपभोक्ता देश भी आ जाते हैं तो कच्चे तेल का बाजार बुरी तरह से डगमगाएगा, ये आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपका एक और सवाल था,
जी हम कितना आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारा जो ये आत्मविश्वास है वो कहां तक है, कितना है, क्योंकि हमारे देश में उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार।
मुझे लगता है आपके सवाल के जवाब देने के पहले दर्शक के पास चले जाते हैं।
इसी बीच दिल्ली से हमारे एक श्रोता है वीके सुमानी। वीके सुमानी जी, मार्केट मंथ में आपका स्वागत है, प्रश्न पूछें।
वेरी गुड इवनिंग सर,
नमस्कार।
डिलाइटेड, एंड माय क्वेश्चन इज बिफोर ऑल ऑफ यू दैट शुड वी कंसीडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी और स्टिल वी शुड वेट to invest in the market.
Okay. Is it an opportunity or should we wait? Mr. Sumani, I think when we talk about the opportunity, of course the opportunity will always be there when the prices are coming down. There is no doubt about it. But the situation is that uncertainty is too much. So putting money directly into the equity is not a good idea. My advice would be that go for, mutual fund, which are not purely equity fund, but a kind of combination fund, number one. Number two, buying a different form of gold, whether you are going for the sovereign gold bond or whether you are going for the ETF, it is also a good idea. And the third one is that there are some money, if you have some good money still left, then of course real estate is one option where you can put money. So direct entry into the equity market, my advice would be please do not go for that.
इसी बीच श्रोताओं को एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल बता दें। एशियाई बाजारों का हाल मिला जुला रहा। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.18% बढ़ा, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.25% गिर गया। इसी तरह चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.44% ढक गया। जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार आज छुट्टी के कारण बंद रहे। यूरोपीय बाजार दिन के कारोबार में मिले जुले तौर पर कारोबार कर रहे थे, क्योंकि अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.2% ऊपर था, जबकि फ्रांस का कैक 0.2% गिर गया। इधर जर्मनी का डैक्स 0.4% नीचे कारोबार कर रहा था। और इसी बीच दिल्ली से हमारे श्रोता हैं डॉक्टर अनिल खरबंदा जी। नमस्कार अनिल जी, मार्केट मंच में आपका स्वागत है, प्रश्न पूछें।
जी हाँ जी, मैं मेरा प्रश्न दो तीन प्रश्न है मेरे जो पूछना चाहता हूँ।
जी हाँ जी हाँ।
एक तो ये कि जो अभी आपने जियो पोलिटिकल टेंशन की जो बात की इस संदर्भ में हमास और यूक्रेन के बारे में।
जी हाँ जी हाँ, पूछिए।
तो जियो पोलिटिकल टेंशन का इतना ज्यादा इंटरेक्शन ये जो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक से रहता है, इकोनॉमी से।
जी
जी, अपना प्रश्न आप पूछते हैं, समय की भी कमी है तो प्लीज पूछिए।
मेरा मतलब जियो पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का जो आपस में इंटरेक्शन है इतना ज्यादा क्यों है, प्लस और सेंसेक्स को इतना सेंसिटिव जो कहा जाता है, हाइपर सेंसिटिव है, तो ये ह्यूमन नेचर की तरह सेंसिटिव है, लेकिन इकोनॉमिक्स तो एक रैशनल साइंस है जो कि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सेंसेक्स इतना सेंसिटिव क्यों है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से इकोनॉमिक्स क्यों अफेक्ट होता है, देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सारे कारणों से अफेक्ट होता है और उसमें एक बड़ा कारण जो है वो जियो पॉलिटिकल है। और आपको नहीं भूलना चाहिए सर कि हम लोग आज एक वैश्विक गांव में रह रहे हैं, हमारी सारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो किसी भी एक जगह पे असर पड़ता है तो वो पूरे दुनिया पे असर डालता है। ये एक सामान्य सी प्रकृति है, आपके घर में भी आपने देखा होगा कि किसी एक व्यक्ति का थोड़ा सा भी मूड बिगड़ा हुआ होता है तो घर में भी बहुत अच्छा माहौल नहीं रहता, वहां पर भी तनाव की स्थिति बन जाती है। दूसरा आपका प्रश्न था कि इसको संवेदी सूचकांक क्यों कहते हैं, जो आपने सेंसेक्स के बारे में कहा। देखिए, संवेदी इसलिए है क्योंकि इसमें 30 शेयरों के जरिए अर्थव्यवस्था की नब्ज को समझने की कोशिश की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही ज्यादा संवेदी होगा क्योंकि आपके पास जो बेस है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन जो उसका असर है वो एक बड़े यूनिवर्स, बड़े जिसको कहा जाए कि तस्वीर को दिखाता है, इसीलिए वो संवेदी ज्यादा कहलाता है।
विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूपया 83 रूपये और 27 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 106.40 पर कारोबार कर रहा था।
मूविंग ऑन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द मॉनेटरी सीलिंग ऑफ गोल्ड लोन्स अंडर बुलेट रीपेमेंट स्कीम फ्रॉम 2 लाख रूपीज टू 4 लाख रूपीज फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। The Union Cooperation Ministry said this will remove difficulties faced by the urban cooperative banks and help in meeting the prescribed priority sector lending target. It said government is committed to strengthen cooperatives and treat them at par with other forms of economic entities, both as beneficiaries and participants. Shishir, if I were to ask you to explain this in very simple terms, what exactly does this RBI announcement today mean?
If I understand correctly, then when you are going for bullet repayment, I think they have used the word bullet repayment. So bullet repayment means that if you have to make a bigger amount of payment in a bigger amount, that is what is simple is, and this is going to help the bank as well as the borrowers, and this is a very good initiative by RBI. If you can recall, it was announced as a part of the monetary policy last week, and it was more to facilitate the relationship between borrowers and the lenders. आपका सवाल
जी
मैं उसी सवाल पे आता हूँ। मैं आपका सवाल था, अगर मैं आप दोहरा दे तो
जी, पेट्रोलियम मंत्री ने आज एक
जो आत्मनिर्भरता की बात कही है, देखिए हम सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें या फिर हम जल ऊर्जा की बात करें, ये तीन आपके पास नवीकरणीय ऊर्जा है, इन तीनों के मामले में हमारी स्थिति बेहतर दिख रही है और यही एक भरोसा दिला रहा है कि आप संकट के दौर से नहीं
गुजर। जल्दी से सोना कहा जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना आज दिसंबर अनुबंध के लिए बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। सोना 599 रूपये या 1% बढ़कर 57,470 रूपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर अनुबंध के लिए चांदी में भी 586 रूपये या 0.86% बढ़कर तेजी आई और यह 68,756 रूपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,864.10 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। दिन के कारोबार में चांदी भी बढ़त के साथ $21.83 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।
And now the clock is telling me that the time has come to wind up the program. Thank you so much for coming to the studio and discussing and answering the calls of our listeners.
Thank you.
And before we close, a reminder of the headlines. Crude prices skyrocket in global market due to Israel-Palestine conflict. Petroleum Minister Hardeep Singh Puri says this conflict will not create energy issue for India. Domestic stocks end in negative territory. Sensex lost 483 points. Nifty finished below 19,600. And negative sentiments seen in Asian and European markets. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Namaskar. Market Mantra.